ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल द्वारा संघीय संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन बैसाख 28 के लिए आह्वान। संवैधानिक परिषद से संबंधित अध्यादेश 2083 राष्ट्रपति द्वारा जारी। विद्यालयों में दल का झंडा और कर्मचारियों में दल का झोला निषेध करने से पेशागत स्वतंत्रता और मजबूत होगी। प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह का बयान। समस्याग्रस्त सहकारी के बचतकर्ताओं की राशि जेठ के पहले सप्ताह से वापस करने की सरकार की तैयारी। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण द्वारा सभी जिला प्रशासन कार्यालयों को निर्देश। और चीन के हुनान प्रांत में पटाखा कारखाने में विस्फोट, 26 लोगों की मौत, 61 से अधिक घायल। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल ने संघीय संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन इसी बैसाख 28 गते सोमवार दोपहर 2 बजे के लिए आह्वान किया है। मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति पौड़ेल ने 28 गते दोपहर 2 बजे सिंह दरबार स्थित संघीय संसद भवन में दोनों सदनों का अधिवेशन आह्वान किया। राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता हितेश कुमार शाक्य ने यह जानकारी दी। इससे पहले प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय सिंह दरबार में आज हुई बैठक ने बैसाख 28 गते दोपहर 2 बजे अधिवेशन आह्वान करने के लिए राष्ट्रपति के समक्ष सिफारिश की थी। राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल ने संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य अधिकार और कार्यविधि प्रथम संशोधन अध्यादेश 2083 आज जारी किया है। सरकार द्वारा उक्त अध्यादेश जारी करने के लिए राष्ट्रपति के समक्ष की गई सिफारिश को राष्ट्रपति पौड़ेल ने रविवार पुनर्विचार हेतु वापस भेजने के बाद कल हुई मंत्रिपरिषद बैठक ने उसी अध्यादेश को ज्यों का त्यों पुनः राष्ट्रपति के समक्ष सिफारिश किया था। प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने कहा है कि शिक्षण संस्थानों में दल का झंडा और कर्मचारी तंत्र में दल का झोला प्रतिबंधित करने से विद्यार्थियों को और कर्मचारियों के अधिकार नहीं छीनेंगे, बल्कि इससे पेशागत स्वतंत्रता और मजबूत होगी। सोशल मीडिया फेसबुक के माध्यम से अपनी धारणा सार्वजनिक करते हुए प्रधानमंत्री शाह ने कहा कि वर्षों से जड़ जमाए विद्यार्थी और कर्मचारी तंत्र का पार्टीकरण देश की व्यवस्था को ही कमजोर कर चुका है और इस तरह झंडा तथा झोला पर प्रतिबंध लगाने से उनके अधिकार और पेशागत स्वतंत्रता और मजबूत होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी द्वारा शिक्षण संस्थान और कर्मचारी तंत्र से राजनीति हटाने की बात संगठन न बना पाने के कारण नहीं, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और कर्मचारियों की गरिमा बचाने के लिए है। सरकार ने समस्याग्रस्त सहकारी के बचतकर्ताओं की रकम जेठ के पहले सप्ताह से वापस करने का निर्णय लिया है। बीते बैसाख 9 गते से काम शुरू किए गए समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति ने सहकारी और बचतकर्ताओं का आवश्यक विवरण संकलन कर बचत रकम वापस करने की तैयारी की है। समिति के अध्ययन अनुसार समस्याग्रस्त सहकारी के करीब 76,000 बचतकर्ताओं की लगभग ₹46 अरब बचत वापस करनी है। इनमें अधिकांश छोटे बचतकर्ता है, ऐसा समिति ने बताया है। 5 लाख से कम रकम वाले बचतकर्ताओं को छोटे बचतकर्ता और 5 लाख से अधिक रकम वाले बचतकर्ताओं को बड़े बचतकर्ता के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कुल 76,000 में से 5 लाख से अधिक बचत करने वाले केवल 18,000 है, यह जानकारी समिति के सदस्य सचिव रबीन ढकाल ने दी। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्री प्रतिभा रावल ने बताया कि बचत वापसी के लिए अधिकांश काम पूरा हो चुका है और अब रकम वापस करने का काम शुरू होगा। राष्ट्रीय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण ने जोखिम युक्त सड़कों पर सवारी आवागमन बंद कर यात्रियों और वाहनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी जिला प्रशासन कार्यालयों को निर्देश दिया है। प्राधिकरण ने जोखिम वाले स्थानों पर आगमन प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों और स्वामियों पर कार्रवाई करने के भी निर्देश दिया है। सरकार ने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 को समयानुकूल पुनरावलोकन करने का निर्णय लिया है। शिक्षा विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम प्रारूप के पुनरावलोकन और नई दिशा देने के लिए प्राध्यापक डॉ बालचंद्र लुइटेल के संयोजकत्व में एक कार्यदल गठन किया है। मंत्रालय ने बताया कि बदलते परिवेश के अनुसार पाठ्यक्रम को समय सापेक्ष बनाने तथा नैतिक शिक्षा लगायत विषयों को शामिल करने के उद्देश्य से कार्यदल गठन किया गया है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं अब कुछ देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दै छ?
सबै राम्रै चल्दै छ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारु गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। सरकार द्वारा सार्वजनिक सेवा को घर घर तक पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई सरकारी कुरियर सेवा 19 जिलों में संचालन में आ गई है। कार्यक्रम शुरू होने के बाद अब तक 3131 पासपोर्ट संबंधित जिलों तक पहुंचाए गए हैं। डाक सेवा विभाग की महानिदेशक मनमाया भट्टराय पंगेनी ने यह जानकारी दी। इनमें से 667 पासपोर्ट सेवाग्राहियों के घर तक पहुंचाकर वितरित किया जा चुका है। सर्वोच्च अदालत ने सुकुम्बासी बस्ती खाली कराने की प्रक्रिया और विधि से संबंधित निर्णय के दस्तावेज प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। न्यायाधीश सुनील कुमार पोखरेल की एकल पीठ ने सोमवार 5 बिंदुओं में सुकुम्बासी बस्ती खाली कराने के निर्णय से संबंधित दस्तावेज पेश करने का आदेश दिया। अदालत ने यह भी पूछा है कि खाली कराए गए बस्ती से हटाए गए परिवारों के पुनर्वास, दैनिक भोजन, वरिष्ठ नागरिक, बीमार और अपांग व्यक्तियों के उपचार, स्वच्छता तथा बच्चों की शिक्षा जैसी न्यूनतम मानव अधिकार संबंधी व्यवस्थाएं क्या और कैसी हैं, इसका वस्तुनिष्ठ विवरण भी प्रस्तुत किया जाए। जिला अदालत काठमांडू ने व्यवसायी शेखर गोलछा को जांच के लिए हिरासत में रखने की अनुमति न देने का आदेश दिया है। न्यायाधीश मोना सिंह की पीठ ने आज गोलछा को हिरासत में रखकर जांच करने हेतु म्याद बढ़ाने की अनुमति न देने का आदेश दिया। अदालत के आदेश के साथ ही व्यवसायी गोलछा रिहा हो जाएंगे। व्यवसायी गोलछा को प्रतिभूति और बीमा संबंधी कसूर में जांच के लिए पुलिस ने इसी बैसाख 14 गते गिरफ्तार किया था। रक्षा मंत्रालय के चालू आर्थिक वर्ष के त्रैमासिक लक्ष्य के अनुसार 80% से अधिक प्रगति देखी गई है। त्रैमासिक प्रगति समीक्षा एवं मंत्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समिति की आज की बैठक ने कोसी कॉरिडोर सड़क परियोजना, कर्णाली सड़क परियोजना और बेनीघाट आरू घाट लारके भंज्यांग सड़क परियोजना की 100% भौतिक प्रगति होने की जानकारी दी गई है। इसी प्रकार काठमांडू तराई मधेस द्रुतमार्ग सड़क परियोजना की 34.4%, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय की 35.73% और बंकर से बैरक परियोजना की प्रगति 23.50% रही है, ऐसा मंत्रालय ने बताया। बैठक में प्रधान सेनापति अशोक राज सिग्देल ने कहा कि कॉरिडोर निर्माण में ट्रैक खोलने के लिए आवश्यक बजट की कमी के कारण क्षमता के अनुसार काम नहीं हो सका। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। मध्य चीन के हुनान प्रांत स्थित लियुयांग शहर में सोमवार शाम एक बड़ा हादसा हो गया, जहां एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाका हुआ है। इस हादसे में कम से कम 26 लोगों की मौत हो गई है और अन्य 61 लोग घायल हो चुके हैं। यह धमाका सोमवार शाम करीब 4:40 बजे हुनान प्रांत के लियुयांग में स्थित हुआ शेंग फायरवर्क्स मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्प्ले कंपनी की एक वर्कशॉप में हुआ। यहां बड़े पैमाने पर पटाखों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। चीन के राष्ट्रपति सी चिनपिंग ने इस घटना पर संज्ञान लेते हुए राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। चिनपिंग ने लापता लोगों का पता लगाने और घायलों को तत्काल इलाज सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने का आह्वान किया है। घटनास्थल पर पहुंचे स्थानीय अधिकारी विस्फोट के कारणों की जांच कर रहे हैं। सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार घटनास्थल पर लगभग 500 बचाव कर्मी तैनात किए गए हैं। राहत बचाव कार्य जारी है। वहीं पास में स्थित दो बारूद के गोदाम से उच्च जोखिम का हवाला देते हुए खतरनाक क्षेत्रों में रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 से 15 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल द्वारा संघीय संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन बैसाख 28 के लिए आह्वान। संवैधानिक परिषद से संबंधित अध्यादेश 2083 राष्ट्रपति द्वारा जारी। विद्यालयों में दल का झंडा और कर्मचारियों में दल का झोला निषेध करने से पेशागत स्वतंत्रता और मजबूत होगी। प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह का बयान। समस्याग्रस्त सहकारी के बचतकर्ताओं की राशि जेठ के पहले सप्ताह से वापस करने की सरकार की तैयारी। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण द्वारा सभी जिला प्रशासन कार्यालयों को निर्देश। और चीन के हुनान प्रांत में पटाखा कारखाने में विस्फोट 26 लोगों की मौत 61 से अधिक हुए घायल। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि। We'll be right back.